ચાલો દ્વાદશાંગ મહિનો પાણી માતા કી છે. પ્રવચન નિર્દેશ કા ગ્રંથ કા સ્વાધ્યાય પ્રારંભ હો રહા હૈ. ઇસમે પેજ નંબર 133 પર ચલ રહે હૈ. ચાર અનયોગો રૂપ જીનવાણી કે અધ્યયન કી શૃંખલા મેં આપને પ્રથમાનુયોગ કી મહિમા કો જાના ઓર પુરાણ ગ્રંથો કે સ્વાધ્યાય કે મહત્વ કો પહેચાના હૈ. કરણાનુયોગ કે અંતર્ગત હમને આપકો બતાયા કે જિનમે જિન ગ્રંથો મેં નરક સ્વર્ગ આદિ કા વર્ણન હૈ, લોકાકાશ અલોકાકાશ કા વર્ણન હૈ, તીન લોક કા વર્ણન હૈ, નરક સ્વર્ગ સિદ્ધ શિલા આદિ કા વર્ણન હૈ, વિ ગ્રંથ તિલોય પ્રણતિ ત્રિલોક સાર જંબુદીપ પ્રણતિ લોક વિભાગ આદિ ગ્રંથ વે કરણાન યોગ મેં આતે હૈ. યે બડે બડે પ્રાચીન ગ્રંથ હૈ ઓર ઇનકે સારે સાર કો સમજને કે લિયે એક ત્રિલોક સાર ગ્રંથ આપને લિયે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હૈ. પુસ્તક ત્રિલોક ભાસ્કર કી, એક ત્રિલોક ભાસ્કર નામ કી પુસ્તક જિસમે પૂજ્ય ગણિની પ્રમુખ શ્રી જ્ઞાનમતી માતાજી ને તીનો લોકો કા સંક્ષેપ મેં સાર બતાયા હૈ ઓર ઉસે પઢકર ઇન સબ ગ્રંથો કી મહિમા કો ઓર ઉસકે રહસ્ય કો જાના જા સકતા હૈ. ઇસ પેજ નંબર 133 પર કહા ગયા હૈ કે યે હૈ ત્રિલોક ભાસ્કર નામ કા છોટા સા ગ્રંથ, લેકિન ઇસકે અંદર સબ કુછ ભરા હુઆ હૈ. કિતની બડી સિદ્ધિ શિલા હૈ, કૈસી સિદ્ધિ શિલા હૈ, અર્ધચંદ્રાકાર ઓર ઉસ પર કિસ પ્રકાર સે અનંતાનંત સિદ્ધ પરમાત્મા બિરાજમાન હૈ. યે સબ જાનને કે લિયે આપ એક બાર ત્રિલોક ભાસ્કર પુસ્તક પઢ લીજિયે, ચંબુદીપ હસ્તિનાપુર સે મંગા કરકે ઇસકા અધ્યયન કર લીજિયે તો આપકો સબ કુછ સમજ મેં આ જાયેગા. તીન લોક કહાં કહાં હૈ ઓર તીન લોક મેં હમ સબ કહાં રહેતે હૈં. આપ ઇસમે દેખિયે કે કહા હૈ કે મધ્ય લોક કે અંતર્ગત ઢાઈ દ્વીપ મેં 15 કર્મ ભૂમિયા હૈ. કર્મ ભૂમિ કા મતલબ જહાં હમ ઓર આપ રહેતે હૈં. છય કર્મ કરકે અસી મસી કૃષિ વિદ્યા વાણિજ્ય શિલ્પ ઇન કલાઓ કે માધ્યમ સે આજીવિકા કે સાધનો કે માધ્યમ સે જો જીવન કો વ્યતીત કરતે હૈં, જહાં પર રહેતે હૈં, વે કહેલાતી હૈ કર્મ ભૂમિ. તો ઢાઈ દ્વીપ મેં 15 કર્મ ભૂમિ કૈસે હૈ નોટ કીજિયેગા આપ. જંબુ દ્વીપ કે અંદર તીન કર્મ ભૂમિ હૈ, ભરત ક્ષેત્ર મેં, ઐરાવત ક્ષેત્ર મેં ઓર વિદેહ ક્ષેત્ર મેં તીન કર્મ ભૂમિ હુઈ. એસે ધાતકી ખંડ કે અંદર પૂર્વ ઓર પશ્ચિમ ધાતકી ખંડ હોતે હૈં, તો પૂર્વ ધાતકી ખંડ કે અંદર તીન કર્મ ભૂમિયા, વહાં ભી ભરત ઐરાવત ઓર વિદેહ ક્ષેત્ર હૈ. ઓર પશ્ચિમ ધાતકી ખંડ કે અંદર ભી તીન કર્મ ભૂમિયા, તો કિતની હો ગઈ? નવ હો ગઈ. આગે ચલેંગે તો પુષ્કરાર્ધ દ્વીપ આતા હૈ. પુષ્કર દ્વીપ કે બીચો બીચ મેં ગોલાકાર માનસોત્તર પર્વત હૈ, તો ઉસસે પહેલે પહેલે તક ઢાઈ દ્વીપ યાની આધા પુષ્કર હો ગયા, એક જંબુ દ્વીપ, એક ધાતકી ખંડ દ્વીપ ઓર આધા પુષ્કર દ્વીપ, તો યે ઢાઈ દ્વીપ કહેલાતે હૈં. ઓર માનસોત્તર પર્વત સે આગે કા જો પુષ્કર દ્વીપ હૈ યા ઉસકે આગે કે દ્વીપ જો હૈ ઉનમે મનુષ્ય નહીં જા સકતે. તો પૂર્વ પુષ્કરાર્ધ દ્વીપ કે અંદર ભી તીન કર્મ ભૂમિયા, ભરત ઐરાવત ઓર વિદેહ ક્ષેત્ર મેં, ઓર પશ્ચિમ પુષ્કરાર્ધ દ્વીપ મેં ભી તીન કર્મ ભૂમિયા હૈ, ભરત ઐરાવત ઓર વિદેહ ક્ષેત્ર મેં. આગે ડિટેલ કરેંગે તો 170 કર્મ ભૂમિયા હો જાયેંગી, લેકિન આપકો યહાં 15 કર્મ ભૂમિયા વિશેષ રૂપ સે બતાઈ ગઈ હૈ કે તીન જંબુ દ્વીપ કી, છ પૂર્વ ધાત કી ખંડ કી, તીન પશ્ચિમ ધાત કી ખંડ કી ઓર તીન પૂર્વ પુષ્કરાર્ધ દ્વીપ કી, તીન પશ્ચિમ પુષ્કરાર્ધ દ્વીપ કી. એસે હી 15 કર્મ ભૂમિયા હુઈ હૈ. યહીં પર જન્મ લેને વાલે મનુષ્ય मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकते हैं, अन्य नहीं। भोग भूमि के मनुष्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये बताया, ये सब कौन बताते हैं? कर्णान योग के ग्रंथ। सुषमा सुषमा आदि छह काल रूप युग परिवर्तन को समझकर, चतुर गति के परिभ्रमण को तथा पंच परिवर्तन को पढ़कर संसार से भय उत्पन्न होता है। जीवों के कुल, योनि, जीव समास, मार्गणा आदि को भी समझना चाहिए, तभी तो जीवों की दया का पूर्णतया पालन किया जा सकता है। अध्यात्म ग्रंथ नियम सार के अंदर श्री कुंद कुंद स्वामी ने भी बताया है, कुल जोणी जीव मग्गण थाणायसु जाणि ऊण जीवाणम तस्सारं वणियत्तण परिणामो होदि परमवदम्। अहिंसा व्रत, अहिंसा महाव्रत क्या है? करें कुल, योनि, जीव समास और मार्गणा आदि स्थानों में जीवों को जान करके कि कहाँ कौन से जीव रहते हैं, उनके आरंभ में निवृत्ति रूप परिणाम का होना यानी उनको मारने आदि की प्रवृत्ति से दूर रहना, हमसे एक भी एकेंद्री आदि जीव का, त्रस का, स्थावर का, बादर जीव का, सूक्ष्म जीव का, किसी का भी घात ना होने पाए, मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से कोई भी जीव हमसे मरने ना पाए, ऐसे परिणाम जो होते हैं उसको कहते हैं अहिंसा महाव्रत। ये सब मुनि और आरिकाएं धारण करते हैं। आप गृहस्थ हैं, आप अणुव्रतों को धारण करते हैं यानी त्रस हिंसा के त्यागी होते हैं, और स्थावर हिंसा का त्याग आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि गृहस्थी चलाते हैं, व्यापार करते हैं, और साधु ना गृहस्थी चलाते हैं ना व्यापार करते हैं। संपूर्ण आरंभ और परिग्रह का त्याग करने के कारण हम लोग महाव्रती, दिगंबर मुनि महाव्रती, पूर्ण महाव्रती और आरिकाएं भी उपचार से महाव्रती कहलाती हैं, क्योंकि उनके शरीर पर एक साड़ी मात्र वस्त्र होता है, इसलिए उपचार महाव्रती उनको कहा है। ये सब वर्णन इस करणान योग के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। खेद है कि आजकल कुछ लोग गुणस्थानों के लक्षण को भी नहीं समझते हैं, फिर भी समय सार को बगल में दबा लेते हैं और उसका स्वाध्याय करते हैं। हम तो बड़े समय सारी हैं, हमें तो आत्मा का ज्ञान हो गया है। तो सचमुच में वे लोग अध्यात्म के मर्म को ना समझकर अपनी आत्मा की ही वंचना करते हैं, माने अपनी आत्मा को ठगते हैं, क्योंकि आत्मा का ध्यान गृहस्थी को हो नहीं सकता और गृहस्थियों को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। अगर कर्तव्य पालन नहीं करते हैं, केवल समय सारी बनकर और आत्मा आत्मा की रट लगाते हैं, तो समझो अपनी आत्मा को ठग रहे हैं। गुणस्थानों को समझने से ही सराग चारित्र कहाँ तक है और वीतराग चारित्र कहाँ से शुरू होता है इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि सराग चारित्र बताया गया कि सातवें गुणस्थान तक होता है और कहीं कहीं तो ग्यारहवें गुणस्थान तक भी सराग चारित्र को माना है। और वीतराग चारित्र का मतलब है आत्मा में एकदम निर्विकल्प समाधि रूप शुक्ल ध्यान में लीन हो जाना, यह वीतराग चारित्र है। तो जब छपक श्रेणी में आठवें गुणस्थान से मुनि लोग छपक श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं, तब उनके वीतराग चारित्र की शुरुआत होती है। तो ये सब कौन बताते हैं हमें? करणान योग के ग्रंथ। जब उसने पढ़ेंगे किस गुणस्थान में कितने कर्मों का बंध हुआ, कितने का उदय है, कितनी की सत्ता है, कितने की बंध विच्युति हुई, कितनी की उदय विच्युति हुई, कितनी की सत्ता से विच्युति हो गई, इन सबको जानने के बाद हमको अपना थर्मामीटर मिलता है कि हम कौन से गुणस्थान में हैं, कितने कर्म अभी हमारे बंध रहे हैं। तो ये सब करणान योग के ग्रंथों को, अब जैसे हमने आपको आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय कराया, हमने आपको गोमटसार जीव कांड का स्वाध्याय कराया, तो ये करणान योग के ग्रंथ हैं, इस बात को समझना। श्री कुंद कुंद स्वामी ने जीवों की विभाव पर्यायों का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य के दो भेद हैं, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। मनुष्य नार की सात पृथ्वियों के भेद से सात प्रकार के हैं, यानी भोग भूमि में रहने वाले मनुष्य भोग भूमिज कहलाते हैं और कर्म भूमि में रहने वाले मनुष्य कर्म भूमि कहलाते हैं। और नरक में ही नारकी रहते हैं। तो सात नरक हैं जो तीनों लोकों में नीचे अधोलोक के अंदर रहते हैं। अधोलोक जो सात राजू लंबाई वाला है, उसके अंदर सबसे पहली पृथ्वी में खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और वेंतर देवों के भवन और आवास आदि होते हैं। 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर भवनवासी देवों के हैं। और नीचे अब बहुल भाग है, उस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हुए, तो उसमें अब बहुल भाग से नरकों की संख्या शुरू होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके नीचे तक सातवां नरक जाता है। और उससे भी नीचे जा करके निगोद का हिस्सा रहता है। बहुत सुंदर तीन लोक की रचना बन रही है। अयोध्या के अंदर भी, जम्बूद्वीप कैंपस के अंदर, तो हस्तिनापुर में आगम के अनुसार 3 लोक बना ही है। अयोध्या में भी बन रहा है। आज ही आपने सुना होगा सुबह पारस चैनल के माध्यम से, उस 3 लोक में, 3 लोक की रचना में विराजमान होने वाले जिन बिंबों का पंचकल्याणक महोत्सव 2 मार्च से और 6 मार्च तक होने वाला है, यानी फाल्गुन शुक्ला द्वितीया से तृतीया से सप्तमी तक। उसमें आप सबको आकर के 3 लोक की रचना को देखना है। सूरज की पहली किरण एकदम सिद्ध लोक के ऊपर पड़ती है, सिद्ध शिला पर, क्योंकि ये पूर्व मुखी 3 लोक की रचना बनी बन रही है, बनी हुई है। तो उसको देखने से, यानी इन सब का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? कर्णानुयोग के ग्रंथ में। तो नारकियों के भेद कैसे, 7 नरकों में रहने वाले नारकी 7 प्रकार के हैं। तिरियंच 14 जीव समाज की अपेक्षा 14 प्रकार के हैं। कैसे 14? 14 जीव समाज आप बताएंगे? एक इंद्री जीव के बादर और सूक्ष्म दो भेद, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये विकलत्रय कहलाते हैं। तो 3 और 2 5 हुए। और पंचेंद्री जीव के संगी और असंगी, ये 2 भेद होते हैं। तो 5 और 2 7 हो गए। और इन सातों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ऐसे 2 भेद होते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 जीव समाज की अपेक्षा तिर्यंचों के संक्षेप में 14 भेद बताए। चतुर निकाय की अपेक्षा देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, ऐसे देवताओं के 4 भेद बताए। इन सब का विस्तार से वर्णन लोक विभाग आदि ग्रंथों से जानना चाहिए। संस्थान विचय धर्म ध्यान भी करणानुयोग के अध्ययन से ही किया जाता है। सम्यक प्राप्ति के लिए जो करण लब्धि होती है तथा चारित्र के लिए जो लब्धि होती है, इनका विस्तार से वर्णन भी करणानुयोग बतलाता है। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां बंधती हैं, कितनी उदय में आती हैं, कितनों की सत्ता रहती है, ये सारा विवरण इसी करणानुयोग से जाना जाता है। करण सूत्रों के द्वारा वर्णित गणित का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन परिणामों की एकाग्रता के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है। कुछ लोग सोच लेते हैं कर्म प्रकृतियों के बारे में पढ़ने से क्या फायदा है, इन ग्रंथों को जरा कठिनता होती है पढ़ने में, लेकिन इनके अंदर चार्ट होते हैं, उसके माध्यम से सब चीज जानते हैं। बंद अबंद, बंद विच्युति, उदय अनुदय, उदय विच्युति, सत्व असत्व, सत्व विच्युति, इन सब को जानकर हम पहचान सकते हैं कि वर्तमान में हमारा कौन सा गुण स्थान है और हम कितने कर्म प्रकृतियों का बंध कर रहे हैं। इससे परिणामों की एकाग्रता होती है। इसके पढ़ने का फल क्या है? परिणामों की एकाग्रता। कर्म सिद्धांत का चिंतन, उदाहरण दिया पूज्य मातई ने अपने गुरुदेव के बारे में। आचार्य श्री वीर सागर महाराज ज्ञानमती माते के गुरु थे, इन्हें चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य और प्रथम पट्टाचार्य, इनसे पूज्य माताई ने आरिका दीक्षा धारण करके ज्ञानमती नाम प्राप्त किया। तो आचार्य वीर सागर महाराज की पीठ में एक बार अदीठ का फोड़ा हो गया। अदीठ का फोड़ा मतलब बिल्कुल हड्डी हड्डी के अंदर फोड़ा हो गया, और उससे बहुत भयंकर वेदना रहती थी। लेकिन फिर भी आचार्य श्री बैठे बैठे अध्ययन किया करते थे, स्वाध्याय करते थे। जब उनके फोड़े को देखा गया, पीठ के बल महाराज लेट भी नहीं पाते थे, तब डॉक्टर को बुलाया श्रावकों ने। डॉक्टर ने कहा, देखो ये तो बड़ा भयंकर फोड़ा है, बेहोश किए बिना हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। आचार्य श्री ने कहा, बेहोशी की कोई बात ही नहीं, आप बताओ कितनी देर में आप ऑपरेशन कर देंगे। बोले घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। बोले ठीक है, अब आप कल आ जाना। और तब तक आचार्य श्री ने अपने सहनशीलता की पूरी तैयारी कर ली। अगले दिन डॉक्टर आकर के डरता हुआ उसने अपने औजारों को निकाल करके और आचार्य श्री का ऑपरेशन बिना बेहोशी के किया, और आचार्य श्री टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल उफ नहीं किया, पत्थर की मूर्ति की तरह बन गए। वेदना तो होती होगी, ऐसा थोड़े है कि कोई पत्थर की तरह ही कि उन्हें वेदना नहीं, वेदना हुई, लेकिन आचार्य श्री ने अपने उपयोग को कर्म सिद्धांत पर लगा लिया। जब उनसे पूछा गया, आचार्य श्री आपने इतनी वेदना को कैसे सहा? बोले कि हमने सारी कर्म प्रकृतियों का चिंतन किया, और उसके बाद चिंतन किया हम कितनी बार, असंख्यों बार नरक में जा चुके, न जाने वहां कितनी बार कढ़ाई में तले गए, काटे गए, मारे गए, त्रियंच की पर्याय में हमने कितनी वेदना सही, और हमने कर्म सिद्धांत के गणित में अपने मन को लगाया, और इस प्रकार से हमारे अंदर सहन शक्ति आई। तो ये एक प्रत्यक्ष का उदाहरण पूज्य ज्ञानमती माता ने बताया, जो इसी 50-60 साल के अंदर की घटना है। तो इस प्रकार का ध्यान भी कहलाता है विपाक विजय नाम का धर्म ध्यान, कर्मों की उदय अनुदय आदि का चिंतन करना, ये विपाक विजय धर्म ध्यान है। ये जीव सम्यक्त व संयम को प्राप्त कर भावलिंगी श्रवण शुद्धोपयोगी आत्मध्यानी बनकर 11वें गुण स्थान तक भी चला जाता है, पुनः वहां से गिरकर कदाचित मिथ्यात्व में आकर यदि एकेंद्री पर्याय में चला गया तो पुनः संसार में कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करता रहता है। इन सब प्रकरणों को पढ़कर बोधि को प्राप्त कर उसकी सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ जागृत होता है और मिथ्यात्व से भय उत्पन्न होता है। महानुभाव, आपको बताया था कि भगवान ऋषभ देव ने भी राजा सुविधि की पर्याय में क्षुल्लक व्रतों को धारण किया, पुनः आ करके उन्होंने स्वर्ग से देवगति को प्राप्त करने के बाद पुनः मनुष्य का भाव प्राप्त किया था, और मुनि बन करके उन्होंने 2 बार उपशम श्रेणी में आरोहण किया था। उपशम श्रेणी में आरोहण का मतलब एक बार 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में पहुंचे, उसके बाद वहां से गिर गए, गिर करके पुनः 6ठे 7वें गुणस्थान में आ गए, उसके बाद फिर से 6ठा 7वां गुणस्थान ऐसा है कि वो बदलता रहता, कभी 6ठा कभी 7वां, मुनिराजों का प्राय 6ठा 7वां गुणस्थान माना जाता। उसके बाद दूसरी बार, जबकि दूसरी बार उपशम श्रेणी चढ़ना रेयर केस है, लेकिन भगवान ऋषभ देव ने अपने पूर्व पर्याय में दूसरी बार जब उपशम श्रेणी में आरोहण किया तो 11वें गुणस्थान में उनका मरण हो गया। या तो 11वें गुणस्थान में जीव मरण करता है अगर उसकी आयु समाप्त हो गई, या फिर गिरता है। तो एक बार गिरे, पुनः उन्होंने आरोहण किया, 11वें गुणस्थान में उनकी मृत्यु हुई, माने कि समाधि हो गई, और उसके बाद उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर, अहमिंद्र सर्वार्थ सिद्धि विमान कौन, 5 अनुत्तर में जो अंतिम विमान है सर्वार्थ सिद्धि का, जहां से केवल एक भाव लेकर ही सीधे मोक्ष चले जाते हैं मनुष्य का भाव लेकर, उस सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हो गए 33 सागर तक, वहां की आयु को बिताकर सुखपूर्वक पुनः इसी अयोध्या में आकर महारानी मरुदेवी के गर्भ से जन्म लेकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव बन गए थे। तो ऐसे हम प्रथमा नियोग को भी पढ़ें तो ये चीजें मालूम होती हैं, करणा नियोग को पढ़ें तो पता चलता है कि हम गिरने वाले हैं, उठने वाले हैं, हमें अपने परिणामों को हमेशा उठाना चाहिए। इस प्रकार से ये करणा नियोग भी सम्यक्त व संयम का कारण है। इसके प्रसाद से रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा होती रहती है। इस विषय में भी प्रमाद न करके इस अनुयोग का सतत अध्ययन करना चाहिए। ये हमने आपको चारों अनुयोगों की सार्थकता नाम की प्रकरण में प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के माध्यम से 2 अनुयोग का की सार्थकता आपको बता दी कि प्रथमान योग के शास्त्रों को पढ़ना, कर्म की व्यवस्था का चिंतन करने के लिए और लोक के अलोक के वर्णन को जानने के लिए करणान योग के ग्रंथों को पढ़ना, इसके लिए आपको प्रथमता मैंने बताया कि त्रिलोक भास्कर का स्वाध्याय जरूर करें। और एक महापुराण सार है प्रथमान योग में, आप अगर अलग अलग तमाम ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहते, महापुराण सार इन दोनों ग्रंथों को आप जम्बूद्वीप से प्राप्त करके और सार रूप में प्रथमान योग और करणान योग के मर्म को, रहस्य को जान सकते हैं। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना कि ग्रंथों का स्वाध्याय करके हमें अपने कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा कर लेना है। जय लो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की।